हम और आप दोनों मिलकर अभी कुछ देर के लिए इस कथा के लिए अपने मन को एकाग्र करते हैं। इस कथा में बहुत सारी कृपा है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं और इस कथा को जो सुनता है हृदय से, एकाग्रता से, भाव से, उसको गौर प्रेम, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम और भक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये कथा है श्रीधर कोलवेचा की। हरि बोल। श्रीधर कोलवेचा महाशय की। ये श्रीधर कोलवेचा यानी जो केला और केले के जो अलग अलग वस्तु होती है उसको बेचते थे, कोलवेचा मतलब बेचने वाला। क्या क्या बेचते थे? केला के पत्ता बेचते थे, केला के पत्ते से बने हुए कप्स दोना बेचते थे, केले का फूल पता है होता ना, वो पर्पल कलर का होता है, वो केला आने के पहले आता है, बहुत सुंदर होता है, उसको बेचते थे, केले के फल को बेचते थे और उसी पर अपना उधर निर्वाह करते थे। श्री कृष्ण के वृंदावन लीला में उनके एक सखा थे, उनका नाम था कुसुमासव, बहुत सुंदर सखा थे वो। वही कुसुमासव सखा जो हैं वो गौर लीला में श्रीधर कोलवेचा के रूप में प्रकट हुए और उनका इसी क्षेत्र में निवास था। आज के तारीख में हम वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनका घर बिल्कुल जंगल में है, मेरे हाथ की दिशा में है, पूर्व दिशा में, अंदर बहुत सारे खेत हैं, आम के खेत हैं, केले के खेत हैं, चावल के खेत हैं, उसके चावल के खेत के बॉर्डर पे चलना पड़ता है जो सब कीचड़ कीचड़ हो गया है अभी पूरा, लेकिन बहुत रमणीय स्थान है। और मैं जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग दोबारा एक बार ठंड के मौसम में यहाँ पर आए, सब कुछ सूखा मिलेगा आपको, तो जंगल में चलने का बहुत ही आनंद आए उसके अंदर, बहुत सुंदर आनंद है। हम लोग कीर्तन करते करते एक एक लाइन से केले के खेत में से ऐसे घूम घूम के जाते हैं और बीच के जंगल में फिर श्रीधर कोलवेचा का घर आता है। बहुत ही रमणीय स्थान है वो, बहुत एकांत स्थान है। उस समय वहाँ गंगा जी बहती थी और वहाँ पर वो झोपड़ी में रहते थे। ऐसे वर्णन आता है कि उनकी झोपड़ी के छत में छत कम छेद ज़्यादा थे, मतलब क्या, बड़े बड़े होल्स थे। बारिश के मौसम में घर में पूरा वर्षा होती थी और उनके धोती में भी कपड़ा कम और छेद ज़्यादा थे, इतने गरीब थे वो। और पूरे नवद्वीप में सबसे सस्ते केले, केले के पत्ते, दोना और फूल बेचते थे वो, उनके नीचे किसी का दाम नहीं था। और इतना गरीब होने के बावजूद भी एक उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसके अंदर कुछ सामान नहीं था, उनके पास एक लोटा था और लोटा ऐसा था कि सब जगह से मार खाया था उसने, हाँ क्या कहते हैं उसको, बीटन अप, हर जगह पे उसमें डेंट्स थे। हाँ वो लोटा वो भोजन के लिए भी इस्तेमाल करते थे, नदी में स्नान करने के लिए भी करते थे, टॉयलेट के लिए भी उसको करते थे उस इस्तेमाल, और हर प्रकार का इस्तेमाल वो लोटे में करते थे। हमारे महाराष्ट्र में भी एक संत थे गाड़गे बाबा, उनके पास भी गाड़गा मतलब एक बर्तन हुआ करता था, वो सबके लिए मल्टीपर्पज उनका एक बर्तन हुआ करता था, उसी से मशहूर हो गए वो गाड़गे बाबा, बड़े संत थे महाराष्ट्र के। वैसे ही हमारे श्रीधर कोलवेचा थे, उनके पास वो पात्र था जिसमें वो सब प्रकार के कार्य करते थे। बरसात में घर उनका पानी से भीगता था। इतना गरीब होने पर भी वो अपना जो आमदनी थी उसकी आधी आमदनी गंगा जी के सेवा पूजा में खर्च करते थे, 50%। हाँ रूप गोस्वामी ने कहा है हमारे लिए, ये जो भी अर्निंग करता है, धन को कमाता है, उस व्यक्ति को 50% धन जो है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। शुरुआत है वो, इट्स नॉट द एंड बाय द वे, हम लोग सोचते हैं वो गोल है हमारा, नहीं ये शुरुआत है, आखिर में 100% देना है भगवान को। क्योंकि देना तो कुछ नहीं है, सब उनका ही है, हमने छीना हुआ है, वापस करना है उनको, है ना, सब कुछ उनका ही दिया हुआ है, हमने झूठे मूठे तरह से उसको अपना बना लिया है और अपना मानकर ही हम चलते हैं, इतना मान लिया है कि अभी अपना ही समझते हैं उसको। देखो देखो पेपर में, एफिडेविट में, कोर्ट में हमारा नाम है घर का, देखो हमारा घर है। और ठाकुर भक्तिनाथ क्या बोलते हैं, थाकियो तो मारा घोरे ऐसा नहीं कहते थाकिया आमार घोरे, ऐसा नहीं बोलते, बहुत सिग्निफिकेंट है वो। भक्ति विनोद आनंदे डूबिया, आनंद के सागर में डूबकर ठाकुर भक्ति विनोद थकिया तो मर घोरे, बाहर उनका नाम है, गवर्नमेंट में उनका रजिस्ट्री है उनके नाम का घर का, लेकिन वो मानते हैं कि आपका घर है, आप स्वामी हैं, आप मालिक हैं, मैं नौकर हूं, आपके लिए मेहनत करता हूं। तो ऐसे 50% अपना इनकम जो है श्रीधर कोलवेचा गंगा जी की सेवा में लगाते थे, और मानो कभी सोते ही नहीं थे, रात भर पुकारते थे भगवान के नाम को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे पुकारते थे कि भगवान का भी हृदय पिघलता था, नहीं भाव से पुकारते थे। लेकिन दुनियादारी के लोग ऐसे थे, समझो भाई आपके घर में सामने कोई हरे कृष्णा ऐसे पुकार रहा है तो आप कंप्लेंट करेंगे मैनेजमेंट के साथ, प्रभु जी रात को डिस्टर्ब होता है, रात को हम लोग दिन भर काम करते हैं सेवा करते हैं, रात को नींद में ये व्यक्ति भगवान को पुकार दे, शायद भूखा होगा शायद। तो ऐसे लोग यहाँ के सोचते थे कि व्यक्ति भूखा है, एक तो इनकम नहीं है, उसमें से आधा इनकम बेकार में वेस्ट करता है गंगा जी की सेवा में, इसलिए खाने को पैसा नहीं है, इसलिए भूखा है, इसलिए भूख से चिल्ला रहा है खाना दो खाना दो। तो लोग है ना रोटी फेंकते थे उसके घर पे, ये लो खाओ उसको, चुप रहो हमको सोने दो, ऐसे लोग करते थे। यही अंतर है संत के और बीच में और सामान्य व्यक्ति के बीच में। संत की जो भावना है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान भुजाए, वैष्णव क्या करता है और क्या सोचता है और क्या सोचकर क्या करता है ये किसी के समझ में कभी भी आता नहीं। नारद मुनि ने शाप दिया नल कुबेर मणि ग्रुप को, जाओ पेड़ बन जाओ, नंगा घूमते हो जाओ पेड़ बन जाओ। आपको लोग इतना कठोर शाप दिया, अरे बाप रे, देवताओं के पुत्र थे वो, बड़े बाप के बेटे थे, एकदम पेड़ बना दिया, इतने हजारों लाखों साल पेड़ के रूप में रहे। अरे नहीं, उन्होंने शाप नहीं दिया, उन्होंने वरदान दिया वरदान, क्योंकि वही पेड़ के रूप में उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया, सारी बाल लीलाओं का दर्शन किया। तो शाप मिला तो लगा था कितने दुष्ट है नारद मुनि, हमको अच्छे कुबेर के बेटे थे, हमको तो पेड़ बना दिया, वैसे अकेले जंगल में भेज दिया सर्दी में गर्मी में तड़पने के लिए। लेकिन नहीं, साधुओं के मन में क्या होता है कोई नहीं कह सकता है, वो क्या सोच के क्या करते रहते हैं वो किसी को समझ में नहीं आता है। इट टेक्स वन टू नो वन, अगर आप खुद भक्त हैं तो आप समझ सकते हो कि उनके मन में क्या है, अगर आप भक्त नहीं तो साधु को कभी समझ नहीं सकते आप। तो ऐसे ये साधु हैं, ये भूख के मारे नहीं रो रहे हैं, ये भगवान के विरह में रो रहे हैं, पुकार रहे हैं उनको, रात रात भर पुकार रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। ऐसे हमारे और एक प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे अकिंचन कृष्णदास महाराज, ये भी ऐसे ही हमारे गुरुदेव भी बताते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव के समय भी वो थे, प्रभुपाद जी के जाने के बाद कई समय तक थे, वो एक वृंदावन में जगह है पावन सरोवर, वहाँ पर भजन करते थे, तो हमारे गुरुदेव वहाँ पर पहुँचे थे। तो उन्होंने कहा है कि वो कभी रात को सोते नजर आते नहीं थे, होल नाइट ही वुड चैंट, कभी सोते थे किसको पता ही नहीं चलता था, दिन रात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ऐसे भक्त थे रघुनाथ दास गोस्वामी के समय पे, उनको भगवान का नाम पुकारने की इतनी आदत थी कि जब कथा में बैठे थे जबान को पकड़ के बैठते थे, यूज टू होल्ड हिज टंग एंड सिट कथा, क्योंकि कथा में भी हरे कृष्णा चालू रहता था उनका, इसलिए वो जबान को पकड़ के कथा सुनते थे, क्योंकि जबान इतनी आदत हो गई उसको कि बिना भगवान के नाम से उसको कोई निकलता ही नहीं था। ऐसे हमारे श्रीधर जी थे, दिन रात भगवान को पुकारते थे, लोग हमेशा उनको गाली देते थे, उन पर रोटी फेंकते थे, चिल्लाते थे सो जाओ, ये भगवान के भक्त पता नहीं दुनिया को तंग करने के लिए नाम पुकार रहे हैं, हमको सोने दो, वो सब माया में सो रहे हैं और ये भगवान को पुकार रहे हैं। और दिन में दुकान लगा देते यहाँ पर और केले बेचते थे और केले के पत्ते बेचते थे। तो निमाई, छोटे से निमाई थे बालक, हाँ बहुत नटखट थे आप जानते हैं, पुखर पकड़ पकड़ के बात करते थे, सब लोगों को डिफीट करते थे, ब्राह्मणों को तंग करते थे। तो दिन में अचानक सुबह की लीला होने के बाद अचानक वो गायब हो जाते थे अकेले, और ये सीमांत द्वीप के जंगल में आते थे एकदम दूर, और श्रीधर के झोपड़ी के पास वहाँ जो दुकान लगाया है वहाँ आते थे। वो बोलते मुझे वो केले के पत्ते खरीदने हैं, केला खरीदना है, दोना खरीदना है, कितना में दोगे? तो वो कुछ दाम बोलता था, बोले इतने महंगे दाम दे रहे हो, नवदीप में सस्ता मिल रहा है। तो कह रहे नहीं नहीं निमाई नहीं, मेरे इतना सस्ता दाम कहीं नहीं मिलेगा आपको, नहीं नहीं ये बहुत महंगा दे रहे हो, मैं इसका आधा दूंगा आपको। नहीं 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 मेरी तो आमदनी कुछ नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, ऐसा मत करो, पहले से मैं सबसे सस्ता बेच रहा हूँ और आप सस्ता मत करना। नहीं नहीं आप चीटिंग कर रहे हो, आपके पास बहुत धन है, आप हमको चीटिंग कर रहे हो, हम आधा देंगे आपको। तो 2 या 3 घंटा रोज बहस करते थे, वे बोलते थे आधा भी नहीं दूंगा, 1/4 ही दूंगा। और एंड में 2-3 घंटा घिस घिस करके वो बोल रहे नहीं नहीं ये केले का पत्ता ये ऐसा वो महंगा नहीं वो सस्ता है ऐसा। इतना घंटा बहस करने के बाद में निमाई पंडित उसका माल वैसे ही उठा के भागते थे फ्री में। ये हमारे एक गुरु भाई हैं, उनका नाम है अभी याद नहीं आ रहा, एनीवेज उन्होंने एक प्रवचन दिया था, उस प्रवचन में उन्होंने कहा था कि समय कितना कीमती होता है ना, और जितना आदमी बड़ा होता है उसका समय भी कीमती होता है। जैसे कि हम एक ऑफिसर हैं, एक हमारे एक टाइम की वैल्यू है, हमको 1 घंटे की इतनी तनख्वाह मिलती है। जो प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर, तो उसका अपॉइंटमेंट तो 2-2 मिनट का भी होता है, कभी कभी 3 मिनट का अपॉइंटमेंट होता है, कभी 5 मिनट का होता है, कभी 15 मिनट का अपॉइंट होता है, एकदम कट टू कट टाइम। जब वो जाता है विदेश तो वो कितने घंटे वहाँ बिताएगा, उसमें कितने करोड़ों सैकड़ों करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट करके लौट के आएगा, ऐसे उनका वैल्यू होता है। तो जितना आदमी बड़ा होता है उतने समय की कीमत होती है। फिर अमेरिका के अध्यक्ष है, फिर ब्रह्मा, उसका एक समय की वैल्यू है। और ये तो भगवान स्वयं है, आप सोच सकते हैं भगवान के समय की वैल्यू कितनी होगी। वो भगवान अपने दिन के 3 घंटे इस श्रीधर कोलवेजा के साथ में बिताते थे। इमेजिन, मतलब वो व्यक्ति कितना कीमती होगा जिसके साथ वो ऐसे लग रहा है कि बेकार की फालतू बातें हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको ना, टाइम पास हो रहा है, बिल्कुल टाइम पास। ये जिगजिग करना, वो जिगजिग करना, वो नहीं नहीं हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ ना, नहीं सस्ता है, नहीं महंगा है, तुम ज़्यादा महंगा दे रहे हो, तुम बहुत लूटते हो लोगों को, ऐसा वैसा करके एंड में उसका सारा सामान उठाना और भाग जाना। जितना समय बालक थे वो, पता नहीं कई साल, और मायापुर में अंतरद्वीप में किसी को पता नहीं कहाँ गया निमाई, नो वन नोज वेयर इज ही, गायब है पूरा। और फिर अचानक प्रकट, केले के पत्ते दोना केला लेकर आ रहा है, घर पे दे रहा है। ऐसा कहते हैं कि रोज श्रीधर के साथ में बहस करते, कभी रोते थे श्रीधर, ऐसा मत करो निमाई, ऐसा मत करो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं गंगा जी की सेवा करता हूँ, मुझे ऐसा डिस्टर्ब मत किया करो आप। उसके ना घर पे एक वेल थी, वेल, वो वेल पे ना एक पम्पकिन रोज आता था, क्या कहते हैं उसको, भोपला, कद्दू कद्दू है ना, वो कद्दू को वो भोजन बनाता था, भगवान को अर्पण करता, गंगा जी को अर्पण करके फिर वो खाता था। तो ऐसा भक्त था श्रीधर, यही लीला है, ज्यादा कुछ लीला नहीं है। अब बोलेंगे सर कथा समाप्त हो गई, नहीं कथा समाप्त नहीं हुई है। ऐसे व्यक्ति के साथ में एकांत में अपने सारे भक्तों को छोड़कर यहां पर आते थे। कौन कौन भक्तों को छोड़कर आते थे? श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, हाँ कितने बड़े बड़े भक्त थे उनके, जिनके घर में संकीर्तन, हरिदास ठाकुर, सबके घर में लीला लीला करते थे वो, इतना आनंद दिया, संकीर्तन यज्ञ करते थे हजारों भक्तों के साथ रात को। वो सारे भक्तों को छोड़कर यहाँ पर आते थे। तो मैंने आपको सबको बताया कि श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने सत प्रहरी लीला की है ना, 21 घंटे तक एक दिन अपने पूरी 48 साल के आयु में और 24 साल के नवद्वीप के निवास में एक दिन उन्होंने 21 घंटा लोगों को अपना भगवान का दर्शन दिया, बहुत आनंद दिया। वो 21 घंटा भी वर्णन नहीं हो सकता उसका, इतना उन्होंने लीला किया। तो सबको बुलाया उन्होंने एक एक करके, और सबको, सबसे पहले उन्हें श्रीवास के नौकरानी को बुलाया, उसका नाम था दुखी। अभी देखो कितना महत्वपूर्ण बात है ये, इतने बड़े बड़े भक्त बैठे हुए, नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार है, महाविष्णु के अवतार, अपना इतना बड़ा ड्यूटी छोड़कर अद्वैत आचार्य बनकर आए हुए हैं, हाँ सदाशिव के अवतार भी हैं वो, राधा रानी आई हुई है, नारद मुनि आए हुए हैं, श्रीवास ठाकुर बनकर श्रीवास के घर के अंदर संकीर्तन हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, जिसका जिसका घर में हो रहा है, इसका घर जो जिसके होस्ट है उसको पहले बुलाना चाहिए ना, वो उसका घर है वो, तो किसको बुलाते हैं, उसके घर के नौकरानी को बुलाते हैं, दुखी इधर आ जाओ। दुखी का काम क्या था, रोज श्रीवास के घर में पानी भरना, नथिंग एल्स, गंगा जी में जाना और घड़े में पानी भरना, दे देना, वापस आना वापस देना, वापस आना जितना चाहिए, मालिनी श्रीवास पंडित की पत्नी का नाम है, जितना वो कहेगी उतना वो पानी भर के लेके आएगी, जितनी बार कहेगी सुबह दोपहर को शाम को, उसका काम खाली पानी भर के लेके आना, मतलब क्या एकदम तुच्छ सेवा कर रही हो, एकदम मिनियल सर्विस कर रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन वो श्रीवास ठाकुर के घर में सेवा कर रही है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप किसकी सेवा कर रहे हो उसके ऊपर आपकी महत्ता बढ़ जाती है, आपका महात्म्य बढ़ जाता है, कृपा बढ़ जाती है। वो एकदम उसको पता नहीं वो क्या बड़ा काम कर रही है, लेकिन वो तो नौकरी कर रही है पेट भरने के लिए, लेकिन वो श्रीवास ठाकुर के घर में कर रही है। श्रीवास ठाकुर जो भगवान के परम भक्त हैं, जो समर्पित थे, श्रीवास ठाकुर को एक बार भगवान ने पूछा था, अरे श्रीवास तुम दिन भर तो कीर्तन ही करते रहते हो, कुछ नौकरी धंधा करते हो क्या, कुछ व्यवसाय कुछ बेचते हो, कुछ सामान, घर में पैसा कहां से आता है? तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं, मैं 3 बार ताली बजाता हूं, और 3 बार ताली बजाने के बाद में अगर मेरे घर में भोजन नहीं आया तो मैं गंगा में डूब में मर जाऊंगा, गले में पत्थर बांध के गंगा जी में डूबूंगा मैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ताली बजाएंगे। अरे वो श्रीवास ठाकुर थे, वो उनकी महानता है, भगवान दिखाना चाहते कि भगवान पर कितने निर्भर थे वो। तो श्रीवास ठाकुर के इस वाक्य को सुनकर गौरांग महाप्रभु ने उनको वरदान दिया, उन्होंने कहा कि आपकी श्रद्धा को देखकर मैं इतना प्रभावित हो गया हूं, इतनी श्रद्धा है आपके भगवान के ऊपर कि आप तालियां बजाते हो और भगवान आपके घर में धन और भोजन लाके देते हैं, और आपको भी श्रद्धा है कि आएगा और नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसे आपकी श्रद्धा है। वो कहते हैं एक ऐसा समय आएगा, समझो भविष्य में, कि स्वयं लक्ष्मी देवी को भिखारी बनकर कमंडल लेकर भीख मांग के घूमना पड़ेगा, समझो ऐसा समय आएगा। लक्ष्मी तो ऐसा हो सकता नहीं, लक्ष्मी तो ऐसा हुआ कि एक झूठ मूठ की लड़ाई में, लक्ष्मी विष्णु की लड़ाई के अंदर एक कंगन टूट गया उसका, वो गिर गया, वो एक टूटे हुए कंगन पर पूरे विश्व का इकोनॉमिक्स चल रहा है, जितना भगवान ने निर्माण किया है महाविष्णु के अंडर, वो एक टूटे हुए कंगन पर पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो चल रहा है, वही फाइनेंस है उनका, दैट इज द फाइनेंस कैपिटल, द ब्रोकन बैंगल ऑफ लक्ष्मी देवी। और उसके अंदर वो केवल ऐसा नहीं कि एक गिर गया तो वो हाथ ही खाली हो गया, हाथ में कुछ है ही नहीं, अभी क्या करूँ, हाथ रिकामा हो गया मेरा, ऐसा नहीं, बहुत सारे भरे हुए हैं, इधर बाजू में भी है, गले में भी रखे हुए हैं, दूसरा हाथ भी है, उंगली में अंगूठियाँ भी है, पैर में पायल भी है, और बहुत सारे रिंग भी पहने हुए हैं, ऐसे लदी हुई है वो। और वो केवल धन नहीं है, वो तो लक्ष्मी मतलब धन का उगम है, वो ओरिजिन ऑफ ऑल वेल्थ, वो कैसे गरीब हो सकती है, वो तो भगवान की लक्ष्मी है। और भगवान कैसे हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानयूं, ऐसे सहस्त्र कोटि लक्ष्मियां जो हैं वो उनकी दासियां हैं, सेवा करती रहती हैं उनकी। तो भगवान ने उनको वरदान दिया कि लक्ष्मी एकाध बार गरीब बन सकती है और भिखारी बनकर कमंडल लेकर भिक्षा मांग सकती है, लेकिन श्रीवास तुम कभी भी भिखारी नहीं बन सकते, मतलब तुम कभी भी निर्धन नहीं हो सकते, तुम्हारे घर में एक बार लक्ष्मी निर्धन हो जाएगी लेकिन तुम कभी भी निर्धन नहीं हो सकते, ऐसा भगवान ने वरदान दिया। ऐसे भक्त थे श्रीवास, तो उसको बुलाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, दास दास अनुदास, गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दास अनुदास, जो उनके सेवक का सेवक होता है ना वो सबसे प्रिय होता है उनको। ये दिखाने के लिए उन्होंने दुखी को बुलाया पहले, और दुखी को सर पे हाथ रखा, बोला दुखी आज से तुम्हारा नाम सुखी, और सुखी जो है एकदम भाव विभोर हो गए, ऐसे गदगद हो गई, वो अश्रु बहने लगे उसके, वो बेहोश हो गई, वहां पर गिर गई, उसको इतना प्रेम दिया भगवान ने, एक क्षण के अंदर कृष्ण प्रेम उसके घर में उसके हृदय में प्रकट कर दिया, और उसको प्रेम को अनुभव करते वो गदगद हो गई, और फिर बाकी सबका नंबर लग गया 1 by 1 1 by 1। तो आपका जीवन में पहले आप एकदम नम्रता से भक्त बनेंगे, जूनियर मोस्ट डिवोटी है ना, व्हाइट ड्रेस, बाद में येलो ड्रेस, बाद में अलग ड्रेस, अब आगे बोलेंगे आपको आगे जाकर क्या बनना है। हमारे ना मीरा रोड के अंदर एक बच्चे हैं, भगवान के भक्तों के बच्चे हैं, उनकी बातें कभी सुनना चाहिए कभी कभी, एक बार और मजेदार संवाद सुना हमने, तो दो ऐसे हमारे गुरु भाइयों के बच्चे बैठकर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ए तो क्या बनेगा लाइफ में आगे, तो कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं ना वो बनूंगा, आगे आके उनका डिस्कशन जो है ना वो जैसे रामानंद राय और भगवान का कैसा आगे बढ़ता गया डिस्कशन, वैसे इनका भी आगे बढ़ता गया डिस्कशन। एंड में एक वक्त बोला, एक लड़का बोला कि मैं ना गुरु बनूंगा। गुरु बनने के बाद बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत महाप्रसाद मिलता है, बहुत सेवा होती है, बहुत माला पहनाते हैं, सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, अपन ना गुरु बनेंगे। तो बच्चे हैं, हम सुन रहे हैं उनकी बात, हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन अपने हृदय में भी वही है कि धीरे धीरे हमको टेंपल कमांडर बनना है, हमको प्रेसिडेंट बनना है, हमको मठाधीश बनना है, हमको गुरु बनना है, हमको शिष्य बनाने हैं। वो क्या है ना, प्रॉब्लम नहीं आता उसके बाद में, शिष्य रहेंगे ना सब सेवा करते रहते हैं, एंड में अपने को बुढ़ापे में समस्या नहीं आती है। ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि से जो भगवान के भक्तों का दासों का दास होता है ना, वो सबसे ऊंचे नजर में होता है। ये देह बताने के लिए उन्होंने दुखी को बुलाया। एनीवेज कुछ समय बाद में उन्होंने कहा श्रीधर को बुलाओ, श्रीधर को बुलाओ। उसके पहले जितने नाम पुकारे थे उन्होंने, वो सबको जानकारी में थे। हाँ श्रीवास आप आ जाओ, हाँ अद्वैत आप आ जाओ, हाँ आ जाओ, वो सब पहचान के थे भक्त लोग, तो आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब भगवान ने कहा श्रीधर श्रीधर कहाँ हो तुम, तो सब भक्तों ने, भगवान है श्रीधर कौन है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी प्रमुख भक्त श्रीधर को तब तक जानते नहीं थे, और तब भगवान की कुछ उम्र 20-22 साल की थी, मतलब शादीशुदा हो गए थे वो, बहुत ऐसा नहीं थे बालक थे, ऐसा नहीं थे, ये लीला बालक समय पर थी, बालक समय पर यहाँ पर हो रही थी। तो फिर भगवान को उन्होंने पूछा कि भगवान गौरांग महाप्रभु कैसे लेके आए, वो कौन है श्रीधर? उन्होंने कहा जाओ सीमांत द्वीप में जाओ, और जहाँ आपको पुकारते हुए हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई पड़ेगा, हाँ संबोधन यानी कि कोई हृदय से पुकार रहा है, उस पुकार को सुनते सुनते चले जाना, और जहां से आवाज आती होगी उस घर में जाना, और जिस भक्ति के मुंह से आती होगी वही श्रीधर है। तो सब भक्त जो है ना ऐसे, क्योंकि वो दिन इतना दिव्य दिन था, उस दिन हमेशा विष्णु विष्णु कहने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है सबको भगवान का दर्शन दे रहे हैं, किसी को कृष्ण बलराम का दे रहे हैं, किसी को सीता राम का दे रहे हैं, किसी को राधा कृष्ण का दे रहे हैं, किसी को क्या दे रहे हैं, किसी को षडभुज दे रहे हैं, अद्भुत दर्शन, कभी हमने सुने भी नहीं ऐसे ऐसे अद्भुत दर्शन दे रहे हैं, और सब लोग सब भक्तों का गौरव अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जिनके साथ में मैं रहता हूँ वो एक एक व्यक्ति कितने महान है, वो सब लोगों को चुन चुन कर भगवान महाप्रभु कृपा कर रहे हैं। तो सब लोग भाव विभोर थे, जिनका जिनका नंबर लग गया है वो भी भाव विभोर थे, जिनका जिनका नंबर लगते हुए दूसरों ने देखा वो भी भाव विभोर थे, बाद में उनका नंबर लग गया वो भी भाव विभोर थे, सब लोग ऐसे पीक में थे वो दिन। तो अभी सब लोग निकल गए, ये श्रीधर कौन है? आज के समय अगर श्रीधर नाम से पुकारा जा रहा है मतलब कोई महान भक्त होगा जो हमको भी पता नहीं है। सब लोग निकल गए, पुकार रहे श्रीधर श्रीधर, आप भी पुकारिए श्रीधर श्रीधर, कहाँ हो तुम कहाँ हो तुम, उस तरफ है। तो धीरे धीरे उनको हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज सुनाई पड़ी, सब लोग इकट्ठा हो गए ऐसे ऐसे, जब मिल गए सब लोग चले जाएंगे इस तरफ, अंदर गए खेत में, एक फटी पुरानी झोपड़ी थी, बोले यहां पर कौन रहेगा, वहीं से आवाज आ रही है, वहां जाते हैं तो वहां पर श्रीधर जो है अकेले बैठकर रो रो को पुकार रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त बोलते हैं श्रीधर श्रीधर, तो वो देखता है अरे आप श्रीधर हो? हाँ मैं ही श्रीधर हूँ, आपको गौरांग महाप्रभु पुकार रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, ऐसे ऐसे आज लीला हो रही है और सब पर कृपा हो रही है, अभी आपका नंबर है, आपको पुकार रहे हैं, चलो हमारे साथ। इतने नम्र थे, इतने नम्र थे वो कि मैं तो इतना तुच्छ भक्त हूँ, मेरी क्या योग्यता है, मैं तो केले बेचने वाला हूँ, मुझे कोई जानता भी नहीं है, मेरी क्या योग्यता है? ऐसा नहीं बोला, अरे आप जानते हो क्या, 3-3 घंटे यहाँ पर एकांत में भगवान मेरे साथ में आते थे, आप लोग क्या समझते हो अपने आप को? ऐसा हमारे मन में के साथ, हम जब कहा जाते हैं ना अनजान जगह पर जहाँ आपको लोग पहचानते नहीं है, तो हमारे मन में ऐसा एक उत्सुकता होती है उनको बताने के लिए, पता है मैं डॉक्टर हूँ, पता है मैं भक्तिवेदांत हॉस्पिटल से हूँ, पता है मैं ये हूँ, पता है मैं वो हूँ, बताने के लिए इतना, मतलब यू डोंट यू नो हु एम आई, ये लो मेरा कार्ड लो, जान लो मैं कौन हूँ। किसी जगह पर आज की स्थिति में अनजान रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये व्यक्ति सालों साल से अनजान रूप में बैठा हो, इतना महान भक्त, तो जब उसने सुना कि गौरांग महाप्रभु सत प्रहरी महाप्रकाश लीला कर रहे हैं और मुझे पुकार रहे हैं, ये सुनकर उसको यकीन नहीं हुआ, बेहोश हो गया। हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मुझे बुलाया जा सकता है इतने बड़े भक्तों के बीच में। तो महाप्रभु जी का आदेश था, तो भक्तों ने क्या किया, उठाओ, बेहोश अवस्था में उठा के ले गए उसको। वो पूरे ऐसे मदहोश अति आनंद के विकार में, ऐसे अष्ट विकार में लुप्त है वो, और बेहोश अवस्था में उसको यहां से लेके अंतरद्वीप में ले गए, सुभाष ठाकुर के घर पे ले गए, और बेहोशी भगवान को प्रस्तुत किया, भगवान के चरणों में रखा। अभी बेहोशी है, भगवान ने कहा श्रीधर उठो श्रीधर, तुरंत आंखें खुल गई। देखा भगवान को पूरे भाव में महाप्रकाश रूप में अपना भगवत दर्शन दे रहे हैं, तो व्याकुल हो गए वो एकदम प्रेम से, और वापस बेहोश हो गए, फिर उठे और फिर बेहोश हो गए, फिर अपने आप को संवारा उन्होंने। तो भगवान ने कहा श्रीधर याद है मैं तुम्हारे घर में आया करता था, मतलब अभी क्या कर रहे हैं, सब भक्तों को बता रहे हैं कि मैं 3-3 घंटे कहाँ बिताता था, वो रहस्य का भेद कर रहे हैं सबके सामने। याद है मैं बालक अवस्था में तुम्हारे घर में आता था और बहस कर करके तुम्हारे केले के पत्ते फ्री में लेके जाता था, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ श्रीधर, मांगो क्या चाहते हो। तो वो कहते हैं मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। नहीं नहीं, आज का दिन जो है वो देने के लिए है, मैं सबको कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, तुमको भी कुछ देना है, बोलो क्या चाहते हो। एक लोक दे दो आपको, लोक है एक पूरा पन फुल प्लैनेट, ऐसा नहीं कि 4 बेडरूम का फ्लैट दे दूँ, वैसा नहीं है, एक लोक दे रहे, लोक प्राप्ति सिद्धि पूरा लोक आपका, क्या करना है कर सकते हो, निर्माण भी कर सकते हो, जो ऐश्वर्य चाहिए वो बना सकते हो उसके अंदर। तो लोग लेके क्या करूँगा मैं हम लोग क्या करेंगे, दे दो तुरंत दे दो, एक जमा हो जाएगा। बोले लोग लेके क्या करूँगा, नहीं एक काम करो मैं तुम्हें इंद्र बना देता हूँ, तुम सारे देवताओं के एक ब्रह्मांड के इंद्र बन जाओ, देवताओं के राजा बन जाओ, तुम ब्रह्मा बन जाओ। बोले क्या करूँगा मैं, मुझे इतना बड़ा मैनेजमेंट नहीं आता है। फिर उन्हें बोला कि आपको मैं अष्टसुद्धि देता हूँ, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, हम लोग तो खाली वो 2 रूम के फ्लैट और एक गाड़ी है स्कूटर के पीछे लगे हैं, उनको पता नहीं सिद्धियां क्या होती है। पिछले जमाने में लोग वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तड़पते थे, रावण हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष और कुंभकर्ण ऐसे सिद्धि वाले लोग थे, हवा में उड़ना, आकाश में उड़कर अदृश्य हो जाना, अदृश्य होकर बाण चलाना, मन की इच्छा से एक लोक निर्माण करना, हाँ हवा में पानी, पानी में हवा निर्माण करना, क्या क्या करते थे, सबसे बड़ा बन जाना, सबसे लघु बन जाना, ये दीवार में से उजर कर बाहर निकल जाना, ऐसे कई सिद्धियां हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। बोला सब ले लो आप सिद्धि, आप सिद्धि लेकर मैं क्या करूंगा। से जो जो भगवान पूछ रहे हैं उसको एक ही जवाब दे रहे हैं, मैं करूंगा क्या उसको लेके। अभी देखो इसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज है, जो जो वो मांग दे रहे हैं भगवान उसको कि ले लो करके, वो सब लोग मांगते हैं इसलिए वो दे रहे हैं उनको। लोग जब तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, मन में अभिलाषा रखते हैं ना, ये सब अभिलाषा उनके मन की जो है वो पहले से ही वो देने के लिए बात कर रहे हैं, ले लो, सब लोग लेते हैं, आप भी ले लो। लेकिन जो आम व्यक्ति भगवान के पास जाकर अभिलाषा करता है, आज के ज़माने में द्वापर में त्रेता में सत्य में अलग अलग प्रकार के समय पर जिनकी बुद्धि प्रचलित मतलब प्रगल्भ है एडवांस्ड है, वो सब प्रकार के लोग जो जो मांगते हैं वो सब पहले से भगवान देने को तैयार है उनको। और सब कुछ देने के बाद वो कहते हैं मैं आपको जन्म मृत्यु के श्रृंखला से मुक्त कर दूंगा। बोले नहीं चाहिए मुझे, मैं आपको वैकुंठ वास दूंगा, मेरे वैकुंठ में आप रहो। बोले नहीं चाहिए, मैं आपको दिव्य देह दूंगा, नहीं चाहिए, गौलोक में रहो मेरे साथ, नहीं चाहिए। तो भगवान कहते ऐसा नहीं हो सकता है, आपको तो लेना ही होगा मुझसे, आज तो लेना ही होगा आपसे। तो कहते हैं अगर मैं आपसे कुछ ले लूं तो आपको प्रसन्नता होगी। यस, मैं बहुत बड़ा खुश हो जाऊंगा। तो कहते हैं कि मेरी एक ही तमन्ना है कि आप जन्म जन्मांतर तक मैं केले वाला बनूं और जन्म जन्मांतर तक आप मेरे पास आए, मेरे केले के पत्ते के लिए दोना के लिए मेरे साथ बहस करें और मेरा केला का पत्ता और केला फल छीन के लेके जाएं फ्री में। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। वो भी क्यों, क्योंकि आप जिद कर रहे हैं और मैं ये भी समझ रहा हूं कि ऐसा करने से आपको प्रसन्नता होगी इसलिए मैं ये मांगता हूं। मतलब वो भी उन्होंने खुद के लिए नहीं मांगा, वो भी बात खुद के लिए नहीं मांगी, वो भी बात उनके लिए मांगी, उनका जीवन ही किसी और के लिए था, खुद के लिए नहीं था। तो ऐसे श्रीधर जो है ना, ये जो मैं सुनता हूं मुझे पता नहीं अजीब सा अनुभव होता है हमेशा, जितनी बार बताता हूं जितनी बार सुनता पढ़ता हूं बहुत दिव्य अनुभव होता है कि ऐसे भी व्यक्ति दुनिया में हो सकते हैं। इसलिए हम उनके घर में जाकर हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आपका जो भाव है उसका एक कण भी हमको मिलेगा ना, निस्वार्थ भाव भगवान की सेवा का, तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप तो उसके भंडार हो श्रीधर, आपके पास में निस्वार्थ भक्ति की भंडार है, तिजोरी है पूरे आपके पास। वो एक बार महाप्रभु उनके घर पे गए और सीधे उन्होंने उनका जो मटका था ना टूटा फूटा उसके से पानी पी लिया, तो श्रीधर जी एकदम चिल्लाने लगे, अरे महाराज ये तो मैं लैटरिन के लिए, इसके लिए, उसके लिए, गंदे काम के लिए यूज करता हूँ, आप उससे पानी पी रहे हो। वो कहते हैं कि जीवन का सर्वोच्च धन तुम्हारे पास में है, तुम बड़े अमीर हो, तुम बड़े धनवान हो। बोले मैं कहाँ धनवान हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो केले के पत्ते बेचता हूँ और मुझे पास खाने के लिए पूरा अन्न नहीं होता है। बोले नहीं, तुम्हारे पास इस विश्व में किसी के पास नहीं ऐसा अलौकिक धन है, धन है, और मैं एक दिन तुम्हें दुनिया के सामने एक्सपोज करूंगा। बोले भगवान क्या करोगे, देखो टूटा फूटा छत है, घर में से इतना पानी बह रहा है, कुछ खाने को अन्न नहीं है, आप मुझे कह रहे धनवान हूँ मैं। तो उस दिन श्रीधर के हृदय में क्या धन था सारे वैष्णवों के समुदाय में, और आज हमारे लिए भी चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम तक आज ये कथा पहुंच रही है। हम सबके विश्व के लोगों के लिए उन्होंने श्रीधर के पास कौन सा अलौकिक दिव्य धन था वो भगवान ने प्रकट किया महाप्रकाश के दिन। श्रीधर जी प्रेम में मदहोश होकर वहां पर नृत्य करने लगे। तो हम सब लोगों को यहाँ बैठकर श्रीधर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सब लोग इस दुनिया में केवल एक ही जानते हैं, मांगना 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 और मांगना। कॉन्स्टेंटली हमारा ट्रेनिंग यही है, कीप आस्किंग कॉन्स्टेंटली, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बोलते भी नहीं कभी कभी, लेकिन दिल में बोल तमन्ना करते रहते हैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। लेकिन भक्त लोग कैसे होते हैं, हमेशा देने की सोचते। नारद मुनि देखो, नारद जगन्नाथ का दर्शन किया तो आनंद लो, इतना बड़ा प्रेम का अनुभव हो रहा है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, उनके लिए आपको आना है, प्रॉमिस मी आप आएंगे, सबको दर्शन देंगे और सब दुनिया के लोग केवल आपको देख के कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करेंगे। हाँ देखो कैसी दया उनके मन में, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते, हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते रहते। इसी की व्याख्या वैष्णव है, जो अपना जीवन खुद के लिए नहीं जीता है। संत लोग कहते हैं कि जब तक आपकी सेवा में इनफ कष्ट नहीं होता है तब तक आपकी सेवा की ऐसा लगता ही नहीं है। खून के आखिरी बूंद तक, हाँ सांस के आखिरी सांस तक भगवान की सेवा करते रहते, और वो भी दूसरे के लिए, खुद के लिए नहीं जीते। और ऐसे जो दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं वो सबसे अधिक भगवान को प्रिय होते हैं, क्योंकि वो भगवान का मिशन में काम करते हैं। भगवान का मिशन क्या है, जो बद्ध जीव दुख भोग रहे हैं उनको तारना, ये भगवान का मिशन है। उसमें जो हाथ बटाता है और ये कार्य में अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने आप को भूल जाता है, वो भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है, क्योंकि भगवान के आर्मी में, उनके मिशन में ये सबसे बड़ा सोल्जर है, जो सबको खुद को निछावर करके इस अग्नि में अपने आप को अर्पण करके दूसरों के उद्धार के लिए अपने कण कण को अर्पण कर लेता है। ऐसे श्रीधर हैं। हम लोग को यहाँ बैठकर हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हृदय से वहाँ जरूर जा सकते हैं। जंगल के बीच में छोटी सी उनकी झोपड़ी थी, वो टूबी खत्म हो गई, अभी एक उसका एक प्रतिबिंब के रूप में एक मंदिर बना के रखा है वहाँ पर। हम लोग वहाँ पर हाथ जोड़ के सब लोग प्रार्थना करते, सब लोग आँख बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए उनसे, हे श्रीधर आपकी भक्ति अलौकिक है, आप निस्वार्थ हो, और आपने जो आनंद गौरांग महाप्रभु को दिया है उसको किसी ने भी नहीं दिया है। कृपा करके हम लोगों को आपके कृष्ण भावना, कृष्ण प्रेम का एक कण दीजिए, जिसे हम निस्वार्थ रूप से, निरपेक्ष भावना से केवल भगवान और उनके भक्तों के आनंद के लिए अपना जीवन समर्पित करें। बाकी सब कुछ जो है वो व्यर्थ है, समाप्त होने वाला है, ये धन जो है वो समाप्त नहीं होने वाला है, भगवान को आकर्षित करने वाला है। जो भगवान को तीन तीन घंटे 48 साल के छोटी सी लीला में हर दिन के तीन तीन घंटे जो वहाँ पर दे सकते हैं, सोच सकते हैं आप कितने कीमती होगा वो व्यक्ति, कितना धनवान, कितना मूल्यवान, कितना अमूल्य व्यक्ति होगा। तो उनकी हम कृपा की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि श्रीधर हम पर कृपा करें, और ये भी प्रार्थना करते हैं कभी हमारा भाग्य हो तो हम आपसे मिल भी पाएँ तो अच्छा है। वी विल लाइक टू मीट यू। श्रीधर ऐसे व्यक्ति मत हुए हैं कि ज़रूर ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए। लगता है कभी आपको ऐसे कि गौरांग महाप्रभु को मिलना चाहिए, नित्यानंद प्रभु को मिलना चाहिए, अद्वैत आचार्य को मिलना चाहिए, श्रीधर कोलवेचा को मिलना चाहिए, हरिदास ठाकुर को मिलना चाहिए। ये व्यक्ति मिलने लायक है दुनिया में, बाकी सब लोग मर्त्य हैं, हम लोगों को भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला में खींचने वाले लोग हैं सब ये लोग, जो जब हमको मिलेंगे तो हम जन्म मृत्यु के सागर से मुक्त हो जाएंगे, वो बाहर निकालेंगे हमको, अंदर नहीं खींचेंगे, वो खुद बाहर गए हुए हैं जन्म मृत्यु के श्रृंखला से, और हमको भी कृष्ण प्रेम देकर उसे बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे दिव्य विभूतियों को मिलने की तमन्ना करनी चाहिए, अगर तमन्ना नहीं करेंगे तो कैसे मिलेंगे। आज तमन्ना कीजिए, अधिक मास में सीमांत द्वीप में बैठकर हमें श्रीधर से मिलना है, एक दिन मिलना चाहेंगे उनको, उनका आशीर्वाद लेना चाहेंगे, उनके चरणों की सेवा करना चाहेंगे, उनकी तरफ पुकारना चाहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।